के दुनियावी नुकसान बयान करने का वो ये है कि हम अच्छी तरह इस बात का यकीन कर लें और अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि गुनाह जो अल्लाह ताला की नाफरमानी का नाम है, इसमें हमारा सरासर नुकसान है, दुनिया का भी और आखिरत का भी। किसी हालत में भी इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। जब गुनाह इतनी बुरी चीज़ है और जब इस कदर ये नुकसानदेह काम है, तो बाहर सूरत हमें इससे बचना चाहिए, ताकि इसके जो दुनियावी नुकसान हैं उनसे भी हम महफूज रहें और आखिरत में जो अजाब है उससे भी बच सकें। इसलिए हजरत ने इसके साले के अंदर तफसील से दुनिया के अंदर होने वाले नुकसान को भी बयान फरमाया है और आखिरत के नुकसान को भी बयान फरमाया। और ये भी एक हकीकत है कि जिस वक्त बंदा गुनाह कर रहा होता है, उस वक्त वो अल्लाह ताला से दूर हो रहा होता है और शैतान के करीब हो रहा होता है। और अल्लाह ताला से दूर होना और खुदा ना खास्ता शैतान के करीब होना, ये अलग बहुत बड़ा नुकसान है। हर गुनाह में अल्लाह पाक ने ये खासियत रखी है कि वो गुनाह करने वाले को दोजख की तरफ लेकर जाता है। जो जो आदमी गुनाह करता जाता है, वैसे वैसे अल्लाह ताला के क़ुर्ब से महरूम होता चला जाता है, और जो जो गुनाह करता चला जाता है दोजख के नज़दीक होता चला जाता है। और दोजख तमाम अजाबों की जगह है, वहाँ के अदना से अदना अजाब के भी हम मुतहम्मिल नहीं। जो जाए कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, दोजख में जा कर के हम पढ़ें और फिर उसके अजाब से दो चार हों। जब ये गुनाह की हकीकत है, तो इसका भी तकाजा यही है कि हम किस्म के गुनाहों से अपने आप को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जो कोशिश करता है और अल्लाह ताला से गिड़ गिड़ा कर गुनाहों से बचने की दुआ करता है, ज़रूर अल्लाह ताला की मदद अपनी नज़रों से देखता है। हमसे अगर कोई गुनाह होता है तो जब चाहे गौर करके देख लो, उसमें हमारी गफलत का दखल होता है। गफलत होती है, लापरवाही होती है, कम हिम्मती होती है, गुनाह के नुकसान का इस्तेज़ार नहीं होता और आदमी गुनाह कर जाता है। वरना अगर किसी के दिल में ज़रा सा भी एहसास हो, तो हकीकत ये है कि सलीम उत्तबा आदमी से गुनाह करना आसान नहीं, मुश्किल है। लिहाजा इसका भी तकाजा यही है कि हम चौकस भी रहें, होशियार भी रहें, गुनाह के मामले में हम गाफिल न रहें कि ज़रा सी हमारी गफलत और सुस्ती से गुनाह सादिर हो जाए। ताहम हम कमज़ोर हैं, नफ्स व शैतान से कभी न कभी मग़लूब हो ही जाते हैं, तो अल्लाह पाक की ये भी रहमत है कि उन्होंने तो दो तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है। जब कभी कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, नाफरमानी हो जाए, तो नदामत के साथ फौरन ही तौबा कर लेनी चाहिए। ये तौबा अल्लाह पाक ने ऐसी ज़बरदस्त नेमत दी है कि बयान नहीं कर सकते। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें हुजूर के तुफ़ैल दो नेमतें अजीबोगरीब अता फरमाई हैं, एक तौबा और एक हुस्न नियत। तौबा के अंदर तो यह खासियत है कि ये मिटाने वाली है, इसमें खासियत मिटाने की रखी है अल्लाह पाक, यानी कितने बड़े से बड़ा गुनाह हो और चाहे जानकर हुआ हो या भूल कर हो गया हो, जाहिर से हुआ हो या बातिन से हुआ हो, बस आदमी शर्मिंदा और नादिम होकर के अल्लाह ताला से उस गुनाह की माफ़ी मांग ले तो उसी आन वो गुनाह कालादम हो जाता है। और ये जो दो लफ्ज़ कुरान करीम में जगह 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 जहाँ हक ताला शानों ने इरशाद फरमाया गफूर रहीम गफूर रहीम गफूर रहीम, तो उलमाए किराम ने इसमें एक नुक्ता बयान फरमाया जिसमें सरासर अल्लाह ताला की रहमत ही रहमत पोशीदा है, कि गफूर के माना तो ये है कि वो गुनाह माफ़ करने वाले, यानी जैसे आदमी अस्तग़फिरुल्लाह 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 दिल से कहता है और नदामत के साथ कहता है तो फौरन ही वो गुनाह माफ़ हो जाता है। तो गफूर रहीम की जो अल्लाह ताला की शान और उनकी सिफत है, ये तो माफ़ करने के लिए है, गुनाह बख्शने के लिए है, कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, यानी बहुत ही अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, बख्शने वाले हैं। और रहीम के माने मेहरबान के, कि अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं। तो इसमें है वो नुक्ता जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि रहीम का मतलब ये होता है कि गुनाह करने की वजह से जो ख़राबी बातिन के अंदर आ गई थी, जो खलल इंसान के बातिन में पैदा हुआ था, उसको भी दूर कर देते हैं और पहले जिस तरह सही सालिम था वैसे ही कर देते हैं। सुभान अल्लाह। इसकी एक मिसाल भी है कि देखो लोहे के ऊपर जंग आ जाए तो एक तो जंग आता है और जंग के साथ साथ उसमें एक गड़ा भी पड़ जाता है। अब अगर जंग दूर कर दिया जाए तो जंग तो दूर हो जाएगा लेकिन गड़ा बाकी रहेगा, उसको तो भरना पड़ेगा, जिसको पॉलिश करना कहते हैं, कि लाबी भर के फिर उसके ऊपर वो पॉलिश करते हैं तब जा कर के फिर उसकी सतह पहले की तरह बराबर होती है। तो जैसे यहाँ पॉलिश के ज़रिए सतह बराबर हो जाती है, रहीम का काम यही है कि वो जो गुनाह करने की वजह से बातिन में खलल आया था, ख़राबी आई थी, तो गुनाह तो माफ़ हो गया यानी जंग तो छूट गया तौबा करने से, लेकिन वो जो ख़राबी आई है, जो गड़ा पड़ा है, वो दूर होगा रहीम के ज़रिए, कि अल्लाह ताला ऐसे रहीम रहमान और रहीम है कि वो जब तुम तौबा करोगे तो माफ़ भी करेंगे फिर पहले की तरह सही भी कर देंगे। लिहाजा आप कितने बड़े से बड़ा गुनाह हो जाए, आदमी घबराए नहीं, परेशान ना हो, बस सच्ची तौबा कर ले, बस 100 दफ़ा गुनाह हो 100 दफ़ा सच्ची तौबा कर ले। तो ये तौबा के अंदर अल्लाह ने खासियत रखी, लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितने गुनाह हुए हों बेशक हुए हों, बस अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा हो जाए, नादिम हो जाए और गिड़ गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, तो वो ऐसे मेहरबान हैं कि माफ़ भी करेंगे और पहले की तरह सही भी फरमा लेंगे। तो एक तो तौबा इतनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने दे रखी है, दूसरी नेमत हुस्न नियत है, कि हुस्न नियत में अल्लाह पाक ने ये खासियत रखी है कि जो काम नहीं किया है हुस्न नियत से उसका भी सवाब करने के बराबर अता फरमा देते हैं। मसलन आपकी नियत थी रात को कि भाई तहज्जुद पढ़नी है, और जो अपने अख्तियार में था वो भी इंतज़ाम कर लिया कि भाई जल्दी भी सो गए, खाना भी कुछ कम खाया, पानी भी कम पिया, अलार्म भी लगाया, फिर भी आँख ना खुली और तहज्जुद नागा हो गई। तो अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने के बराबर ही सवाब नामे अमाल में लिख देंगे। वो तो इतने मेहरबान हैं और इस तरह इस कदर करीम करामा हैं कि तहज्जुद पढ़ने का सवाब तो तहज्जुद पढ़ने पर देते ही हैं, और तहज्जुद पढ़ने की नियत पर भी देते हैं। नियत तो कहते हैं पुख्ता इरादे को, खाली अज़्म करे आदमी, जिसको कहते हैं ज़्यादा पुख्ता इरादा नहीं है लेकिन है, पढ़ने की नियत है लेकिन पुख्ता इरादा नहीं है, उस पर भी एक नेकी अता फरमा देते हैं। इतने अल्लाह ताला अता करने वाले। इसीलिए बाद रिवायतों में ये बात आती है कि कयामत में बाज़ लोग उठेंगे और जब उनके नाम अमाल उनको दिया जाएगा, कहा जाएगा भाई अपने नाम अमाल पढ़ लो, तो अहले ईमान को दाएं हाथ में ईमान अमाल नामा मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबके भी दाएं हाथ में अता फरमाए और बाज़ों के बाएं हाथ में मिलेगा, ये नाकाम होने की दलील होगी। अल्लाह ताला इनसे हमें महफूज रखे। तो जिनके दाएं हाथ में अमाल नामा मिलेगा, जो अहले ईमान होंगे, वो अपने जब अमाल नामा पढ़ेंगे तो हमने तो नमाज, हमने तो फला काम किया ही नहीं था, ये तो यहाँ भी इसका सवाब लिखा हुआ है, ये मसलन जैसे तहज्जुद तो हमने पढ़ी नहीं थी, इसमें सवाब लिखा हुआ है, सदका हमने किया नहीं था वो भी इसके अंदर सवाब लिखा हुआ है, या फला नेकी हमने तो की नहीं थी वो इसमें, तो पूछेंगे या अल्लाह हमने तो ये काम नहीं किए थे, ये कैसे हैं हमारे नाम अमाल में आ गए। तो उनसे कहा जाएगा तुम किए तो नहीं थे मगर तुम्हारी नियत थी, इसलिए इसका सवाब भी तुम्हारे नामे अमाल में लिख दिया गया, कि वो ऐसे मेहरबान हैं कि नियत करने पर भी अजर अता फरमा देते। इसीलिए एक काम में एक से ज़्यादा अच्छी अच्छी नियतें आदमी अगर करे तो सब नियतों का सवाब पाए। काम एक सवाब दस, काम एक सवाब दस। इसकी ऐसी मिसाल है जैसे कि कोई आदमी मस्जिद में नमाज बाजमात पढ़ने के लिए जाने जाए, अब जाएगा तो जा करके जमात से नमाज ही पढ़ेगा, लेकिन अगर चलते वक्त वो इस नियत के अलावा और भी नियतें कर ले, मसलन ये नियत कर ले कि मैं मस्जिद में जा कर के एतकाफ़ करूँगा, और नफसली एतकाफ़ तो रमज़ान के अलावा हर रोज़ हर वक्त हर दिन हर दम हो सकता है, और एतकाफ़ तो 1 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है। तो घर से चला तो ये नियत कर ली कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ एतकाफ़ नफली एतकाफ़ करूँगा, अब इसका सवाब अलग मिलेगा। और ये नियत कर ली कि मैं मस्जिद में इसलिए जा रहा हूँ नमाज बाजमात अदा करने के लिए कि मैं रास्ते में या वहाँ कोई भी अगर मुसलमान मिलेगा तो मैं सलाम करूँगा, और अगर उसने सलाम किया तो मैं जवाब दूँगा, तो ये अलग नेकी है, इसकी नियत का सवाब अलग मिलेगा, फिर सलाम दुआ करेगा तो उसका सवाब अलग मिलेगा। यह इसके साथ साथ ये भी नियत कर ली कि मैं जाऊँगा तो अगर रास्ते में कोई गिरी पड़ी चीज़ मुझे मिली जिससे आने जाने वालों को तकलीफ़ हो सकती है तो मैं वो रास्ते से हटाऊँगा, इमातुतुल अज़ा यानी तरीक पर अमल करूँगा, इस नीयत से मस्जिद में जा रहा हूँ, तो इसका सवाब अलग मिलेगा। या उसने ये नियत कर ली कि भाई मस्जिद में तो जा रहा हूँ लेकिन रास्ते में या मस्जिद में अगर मुफ्ती साहब से मुलाकात हो गई तो फला मसला पूछूंगा, मसला पूछने जा रहा हूँ, मुफ्ती साहब तो होते ही हैं मस्जिद में, लिहाजा उनसे मिल करके एक मसला पूछूंगा उनसे, तो अब चाहे मिले न मिले, पूछने का मौका मिले न मिले, नियत करने का सवाब मिल जाएगा। और ये नियत कर ली कि भाई मैं जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज बाजमात अदा करने के लिए, रास्ते में या मस्जिद में जाकर कोई बीमार मिल गया तो मैं उसकी बीमार पुरसी करूँगा और उसकी इयादत करूँगा, अल्लाह अकबर, तो इस इयादत का सवाब तो बहुत बड़ा है। अब चाहे कोई मरीज़ मिले न मिले लेकिन नियत करने से उसको उसका सवाब मिल जाएगा, اور بیمار کی بیمار پرسی گا جو ثواب عظیم ہے وہ مفت میں اس کے کھاتے میں درج ہو جائے گا. یہ نیت کر لی کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں, وہاں پر کوئی مصیبت زدہ پریشان حال شخص ملا تو میں اس کو تسلی دوں گا, ہو سکے تو میں کچھ کام آؤں گا, اگر میں کچھ کام نہ آ سکا تو کم از کم اس کو میں تسلی ہی دے دوں گا. تو یہ ایک الگ نیک عمل ہے. جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے, نیت اس کی کر رہا ہے تو نماز کا ثواب الگ ملے گا, اس کا ثواب الگ ملے گا. اور یہ نیت کر لی کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں, وہاں پہ اگر کوئی آدمی ایسا ملا جو بیچارہ راستہ بھول گیا ہوگا یا اسے کسی سے ملنا ہوگا اور یہاں وہ اجنبی ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کون کہاں ملے گا, تو میں اس کی رہنمائی کر دوں گا تاکہ جس کام کے لیے وہ آیا اس کا بیچارے کا وہ کام بآسانی ہو جائے, تو اس کا ثواب الگ ملے گا. اب وہ کتنی ساری نیتیں ہو گئیں. تو انما لمریم مانوا جو حدیث ہے جبریل کے اندر ہے, یہ اس کی دلیل ہے. اس دلیل پر علماء فرماتے ہیں کہ ایک عمل میں ایک سے زیادہ نیت کرے گا تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا. تو اچھی نیت جو ہے ایسی بہترین نعمت ہے کہ نہ دل لگی, وہ کہتے ہیں نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری, رنگ چوکھا آ گیا. ایک مسئلہ ہے یہ, تو محنت کچھ نہیں ہوئی, بس خالی دل کا کانٹا جو ہے اس نے بجائے ایک عمل کے 10 عمل کی طرف گھما دیا کہ یہ بھی کروں گا, 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 اور کیا کچھ نہیں, اور ثواب بھی مفت میں مل گیا. تو یہ ایسی نعمت ہے, تو اس لیے حسن نیت کو یہ پلے باندھ کے رکھیں کہ ہر کام میں ہم سوچ سوچ کے اپنے طور پر اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں. ہمارے ایک استاد ہیں, اب بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے, احسان ہے, بڑے نیک استاد ہیں. ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ جو ہم فجر کے بعد چہل قدمی کرنے جاتے ہیں, تو میں نے ایک دفعہ سوچ سوچ کے 50 نیتیں کی, 50 نیتیں میں نے کی, اور عمل ایک ہے. وہ چہل قدمی کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے اپنی صحت کے لیے, اور اس لیے جاتا ہے تاکہ میں چاق و چوبند رہوں اور حقوق اللہ, حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر مستعد رہوں. تو 3 نیتیں دیکھو یہ میں نے بتا دی آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 50 نیتیں کی تھی. میں نے کہا جو آپ نے کی میں نے بھی کر لی. وہ 50 نہ وہ مجھے سناتے نہ میں ان سے پوچھتا, اتنی ساری کون پوچھو, پہ یاد بھی آنا مشکل ہوتا. تو بھائی ایسا گر ہے یہ, اسے کہتے ہیں کمائی کا گر, کمانے کا گر. تو دین کمانے اور آخرت کمانے کے یہ گر ہیں جو کہ بزرگوں سے ملتے ہیں. اس پر مجھے گر پر ایک اور بات یاد آئی. مدینہ طیبہ میں جنت البقیع کے اندر ہمارے بہت سارے اکابر الحمدللہ آرام فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی جوتیوں کے سفیل ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے. ان میں سے ایک بزرگ حضرت بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ, جو آخر میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے, اور پھر عرصے تک وہاں قیام رہا, اور وہاں روزانہ حضرت کی مجلس ہوتی تھی, اور وہ قطب العالم تھے. یعنی پوری دنیا میں, پوری دنیا کے قطب تھے وہ. اور قطب جو ہوتا ہے بزرگوں کے خاص اور بہت ہی اونچا اور اعلیٰ مقام کا نام ہے. تو بعض بزرگ جو ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے اعتبار سے قطب ہوتے ہیں. تو وہ اس وقت قطب العالم تھے. ان کی خدمت میں میرے چچا رحمۃ اللہ علیہ حاضر باش تھے, اور جو بھی پاکستان سے لوگ حج کرنے جاتے تھے تو ان کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دن میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت بیان کر رہے تھے. تو بیان میں حضرت نے یہ فرمایا کہ مجھے دنیا کمانی اس قدر آتی ہے, اور میں بھی دنیا کمانا خوب جانتا ہوں, اور ایسے ایسے گر دنیا کمانے کے مجھے معلوم ہیں کہ اگر میں پاکستان جا کر کے انہیں استعمال کروں تو ارب پتی بن سکتا ہوں. اس زمانے کا ارب پتی کتنا ہوگا, اب تو 1 ارب بھی ہلکا ہو گیا. پہلے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فلاں ارب پتی ہو سکتا ہے. کہنے لگے میں ایسے ایسے گر جانتا ہوں دنیا کمانے کے کہ اگر انہیں استعمال کروں تو ارب پتی بن سکتا ہوں. پھر روضہ اقدس کی طرف اشارہ کیا, مگر میں تو اس شاہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں کہ ان کی ایک نظر کرم ہو جائے اور میری کشتی پار لگ جائے, یعنی خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے और जन्नत अलबकी की मिट्टी नसीब हो जाए। बस मैं तो इस आस में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, वरना दुनिया तो मुझे भी कमा नहीं आती। तो ऐसे बुजुर्ग थे वो माशाल्लाह, तो उनको भी दुनिया कमाने का गुर मालूम थे, मगर अल्लाह वाले दुनिया ठुकरा करके आखिरत के गुर इख्तियार फरमाते। तो ये जो दो गुर हैं ये आखिरत कमाने के हैं, एक अच्छी नीयत और दूसरे तौबा। लिहाजा तौबा का भी दामन मजबूत थामे रखें और हुस्न नीयत को भी अपने पल्ले बांधे रखें। जब किसी से मिलने जाएं, जब किसी अहम काम को अंजाम दें, उसी वक्त कुछ देर के लिए ज़रा सोच कर कुछ जितने जहन में आ जाएँ अच्छी अच्छी नीयतें कर लें, और नहीं तो आखिर में एक गुरु मैं बता देता हूँ मुझे कि अल्लाह जितने भी अच्छाइयाँ हो सकती हैं मैं इसके ज़रिए करना चाहता हूँ, और जितनी बुराइयाँ हो सकती हैं उनसे मैं बचना चाहता हूँ, बस आप अपने रहमत से मुझे इस काम की तौफीक दे दीजिए। लो भाई, तब अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। और अल्लाह ताला का इल्म कि कौन जान सकता है कितना है कैसा है, वो अपनी शान के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला महरूम नहीं फरमाएंगे। तो खैर, गुनाह जो है अगर हो जाए तो मायूस ना हो आदमी, गुनाह अगर हो भी जाए तो कभी मायूस ना हो, बस तौबा का दरवाज़ा खटखटाए। जैसे हज़रत बाबा नजमे हसन रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे बुज़ुर्गों में से गुजरे हैं माशाल्लाह, बड़े अजीब गरीब मिजाज व मजाक के बुज़ुर्ग थे, उनकी ख़ास बात तो ये थी कि जब उनकी खिदमत में हाजिर होते तो इससे पहले कि हम अर्ज़ करते कि हज़रत मेरे लिए दुआ फरमाना, कहते भाई तुम्हारे कहे बगैर दुआ करता हूँ मैं, एकदम यूँ कहते थे भाई तुम कहे बगैर मैं तो तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या दिल में ठंडक पड़ती थी इसको सुनकर। एक तो ये उनकी माशाल्लाह मुबारक मामूल था ये, दूसरा वो गुनाहों के सिलसिले में ये शेर सुनाते थे कभी कभी, क्या दौलतें मिल गई हैं आहों की ऐसी तैसी मेरे गुनाहों की सुभान अल्लाह, दौलतें मिल गई हैं आहों की ऐसी तैसी मेरे गुनाहों की, यानी जब गुनाह हो जाता है तो मैं अल्लाह तआला रोता हूँ और गिड़गिड़ाता हूँ, हाय हाय करता हूँ कि अल्लाह ये गुनाह हो गया, या अल्लाह ये गुनाह हो गया, अपनी रहमत से माफ़ कर दीजिए, सब ऐसी तैसी मेरे गुनाहों की, मेरे गुनाह उनके रहमत के क्या बच सकते हैं, उनके गुनाह उनके रहमत का तो ये आलम है कि सारे अव्वलीन व आखिरीन अगर किसी मैदान में जमा हो जाए और उन्होंने सारे ही अकसाम के गुनाह कर लिए हों और एक ही आन में सब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और तौबा करें और अल्लाह ताला अपने रहमत से उनको माफ़ करें, तो जैसे समंदर में सुई डुबो करके उसके नाके को निकालो तो जितना उसमें हल्का सा पानी सुराख में होगा, जितना समंदर में इतना पानी कम हो गया सुई में आने की वजह से, अल्लाह ताला की रहमत में इतनी भी कमी नहीं आती। तो जब हमारे गुनाहों की उनके रहमत क्या है कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर काहे का गम और काहे की नाउम्मीदी और काहे की मायूसी, बस आदमी गलती हो जाए माफ़ी मांगे, बस जानबूझ कर गुनाह नहीं करे, या अल्लाह ताला की रहमत के भरोसे गुनाह नहीं करे। वरना तो हजरत ने नुकसानात में यही बयान किया है कि जब आदमी गुनाह करता रहता है तो फिर आहिस्ते आहिस्ते तौबा की तौफीक भी सलब हो जाती, ना मायूस हो ना जरी हो, जरी भी ना हो और मायूस भी ना हो, बस गुनाह हो गया है तो बस अब तौबा का दरवाज़ा खटखटाए और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे। हमारे हजरत सैयदी आरफी कदस अल्लाह सिरहु एक बहुत ही प्यारी बात टेप रिकॉर्डर के ज़रिए की मिसाल दिया करते थे। उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर नया नया आया था, अब तो कहीं से कहीं माशाल्लाह ये तरक्की कर गया। तो कहते हैं ये टेप रिकॉर्डर देखो इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और बड़ा इसमें सबक है। वो ये कि देखो इसमें गाने भरे हुए हों, लगवियात भरी हुई हों, फजूलियात भरी हुई हों, आपस में हंसी मजाक उसके अंदर टेप किया हुआ हो, पर आखिर में रब्बिनी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल ग़फ़ूरुर रहीम भर लो, तो पिछला ख़त्म और ये बाकी रह जाएगा, क्योंकि टेप के ऊपर जो दूसरी टेप करोगे पिछला वाला ख़त्म और जो नया आपने टेप किया वो बाकी रहेगा उसके अंदर, पिछला वाला उसमें मिट जाता था। तो कहते हैं ऐसे तुम भी भाई रोज़ाना तो वो भी करते रहो, तो गुनाह भी तुम्हारे खाते में लिखे जा रहे हैं, तो वो भी टैप हो रहे हैं। और आखिर में तुम क्या कहते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो, तो वही सारे पिछले जितने भी गुनाह थे वो ख़त्म, और तौबा 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 जो है बस वो भरी रह जाएगी उसके अंदर। तो फरिश्ते कहेंगे, यार अल्लाह ने तो तौबा कर रखी है, जब तौबा होगी तो फिर तौबा करने वाले की तो अत्तायब में अज़म भी कमल लाजम बल हो, जो तौबा करने वाला होता है तो वो होता है ऐसा होता है जैसे ने कोई गुनाह ही नहीं किया। तो ये भाई तौबा बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने दी है, और हुस्न नियत भी अल्लाह पाक ने बड़ी नेमत हमें अता फरमाई है। बहरहाल जिस गुनाह का तस्करा पिछले मंगल शुरू हुआ था वो ये है कि ये जो जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं ना, ये दरअसल दुश्मनाने खुदा की मीरास है। जितने बड़े बड़े गुनाह हैं दरअसल इनके करने वाले बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े काफिर और बड़े बड़े खुदा के दुश्मन के ये आमाल हैं, उनके ये काम हैं ये, और उनकी ये मीरास है अल्लाह बचाए। तो अगर कोई इन गुनाह का करे को गुनाहों को करेगा तो गोया उनकी मीरास पाएगा। जैसे जिक्र किया था मैंने कि सबसे पहला जो आसमानों पर गुनाह हुआ था वो तकबूर का गुनाह हुआ था। पहला गुनाह जो आसमान पर हुआ वो तकबूर का गुनाह हुआ जो शैतान ने किया, जिसके नतीजे में वो मलऊन हुआ, मरदूद हुआ, अल्लाह की रहमत से महरूम हुआ, और क़यामत तक अल्लाह ताला की लानत उसके ऊपर पड़ गई ये तकबूर की वजह से। और उसकी वजह से वो आसमान से नीचे फेंक दिया गया और क़यामत तक के लिए उसको ज़िंदा रहने की मोहलत दे दी गई उसकी दुआ की वजह से, रब्बी अंज़िलनी ला यौमा युबअसून। तो उसकी वजह से उसका एज़ाज़ ख़त्म हो गया, आसमानों पर रहा करता था, वहाँ से उसका वहाँ से उसको निकाल दिया गया और सारी इज्जत ख़त्म हो गई, सारी इबादत रायगा हो गई और हमेशा के लिए काफिर और मरदूद हो गया। अब अब अस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। तो अब जो भी तकबर करेगा तो भाई वो शैतान के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा। इसी तरह दूसरा गुनाह का मैंने ज़िक्र किया था कि आज हमारे ज़माने में नापने तोलने का बड़ा आम गुनाह है कि नापने में कमी, तोलने में कमी, तादाद में कमी, मुलाजमत के अंदर ड्यूटी पूरी न देने की कमी, काम पूरा न करने की कमी, कोताही पाई जाती है। इसके सबसे पहले हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने ये गुनाह किया था। अब वही गुनाह अब दुनिया में चल रहा है तो उनको भी एक सारा गुनाह होगा। जितने लोग भी नाप तोल में कमी करेंगे उसका गुनाह उनको भी होगा, क्योंकि पहले वो ज़्यादा करने वाले हैं इसके, लेकिन जो करेगा वो भी उन्हीं की मीरास पाने वाला होगा और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा। इसी तरीके से बदफेली जो है, लड़कों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करना, मर्दों को मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरे करने को ना कौम लूत ने किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया तो उन्होंने किया, तो उन्होंने किया। तो ऐसी सूरत में अब क़यामत तक जो लोग भी ये गुनाह करेंगे वो दरअसल कौम लूत के इस गुनाह कबीरा के करने वाले होंगे और अल्लाह बचाए ये उनकी मीरास पाने वाले होंगे। जितने भी दुनिया में नाहक कत्ल हो रहे हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने अपने दूसरे भाई को कत्ल नाहक कत्ल किया था, अब ये उसके खाते में भी कत्ल लिखा जाएगा और जो लोग भी उस गुनाह को करने वाले हैं, नाहक कत्ल करने वाले हैं, वो सब उसी की मीरास पाने वाले कहलाएंगे। ऐसे ही हजरत ने लिखा है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ये इंतहाई ज़ालिम, सरकश और मुतकब्बिर थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर होलनाक अज़ाब आया। तो अब जो भी दुनिया में जुल्म ढाएगा, ज़्यादती करेगा, तकब्बुर करेगा, बड़ाई को इख्तियार करेगा, तो वो हूद अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम की मीरास पाने वाला होगा और उनके नक्शे कदम पर चलने वाला होगा। इस तरह से हज़रत फरमाते हैं कि जितने भी गुनहगार हैं, चाहे वो कितने ही बड़े से बड़े गुनाह को करने वाले हों, लेकिन उनका वो मुशाबे होंगे पिछली कौमों में से किसी न किसी कौम के, जिन्होंने पहले वो गुनाह किया था जिसकी वजह से उनके ऊपर दुनिया में अज़ाब आया اور حدیث میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو سر کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا انہی میں شمار ہوگا، ظاہراً تو انہی میں شمار ہوگا، پھر خاتمہ اگر اس کا ایمان پر ہوا ہوگا تو آخر اپنے اور توبہ بھی نہ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فضل سے معاف نہ کیا ہوگا، تو پہلے اپنے ان گناہوں کی سزا پائے گا، اور سزا پا کر کے پھر جا کر کے وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں جا سکے گا۔ تو پھر کاہے کو آدمی ان گناہوں کرے بھائی؟ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو سوچے اور اپنا جائزہ لے کہ بھائی میں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ پہلے کسی نہ کسی گمراہ قوم نے کیا ہے، جب قوم نے کیا ہے تو میں کروں گا تو میرا بھی ان میں شمار ہوگا، یہی بات انسان کی عبرت کے لیے بہت ہے۔ پھر اگر غلطی ہو گئی تو بھائی توبہ کرنے میں کیا دیر لگتی ہے، جلدی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس طرح سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے اس لیے بھی بچائیں کہ کافر قوموں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہونے پائے اور ہم پر ان کا ظاہراً ان کا حکم لگنے نہ پائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ اور حسن نیت کو اپنے عمل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
www.darsquran.com